तस्याग्रजौरिपुरीं माथुरीं दुष्टवाटीं राधाकुण्डं गिरिवर्महो राधिका माधवासा प्राप्तो जस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरोकार्थविराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां कृष्ण तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवां इति विज्ञाय राधे तं नयनां मैं सबसे पहले अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्मों विष्णु पाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के सर्वस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि श्रद्धा दंडवत पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात त्रिदंडी पादगण वैष्णवगण वैष्णवीगण एवं सज्जन सज्जन लोगों ने अब तक की श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण का किया होगा। किस प्रकार से कंस को मारा उसके आगे का चरित्र, किस प्रकार कृष्ण उद्धव को ब्रज में भेजा मैंने उसी दिन बतलाया था। उद्धव जी के चरित्र के दिन उद्धव ब्रज में आए, शाम को आए, गोधूली का समय था, गायें वन से लौट रही थी, चारों तरफ ब्रज में धूल धूसरित हो रहा था। उद्धव जी आए हैं, दरवाजे पर हैं, द्वार पर खड़े हैं, नंद बाबा को पता लगा, बड़े प्रेम से उन्हें अंदर महल में ले गए। इच्छा हुई इनको कुछ खिलाए, बहुत भूखा होगा, परिश्रम से थक गया होगा, बहुत दूर का रास्ता इसलिए। किंतु घर में तो रसोई बनी नहीं, किसके लिए आखिर बनती, लाला तो है नहीं, रसोई अब बनती ही नहीं उनके घर में। चूल्हे के ऊपर मपरसों ने जाल बुन रखा है, रसोई के पात्र औंधे पड़े हैं, कृष्ण चले गए हैं मथुरा और वहां से गुरु गृह होकर के आए हैं। पता है इसलिए कुछ खिला नहीं सके, किसी को भेजा पुरोहित जी के यहां से, किसी ब्राह्मण के यहां से खीर बना करके ले आओ। खीर बनी किंतु उसमें चीनी नहीं, ऐसे ही उद्धव जी को भूख लगी थी, खाया, थोड़ा विश्राम किया, नंद बाबा के पास में बैठे, पूछना चाहते हैं हमारा लाला कैसा है, किंतु गला रुक जाता है, बोल नहीं पाते, आंखें भर जाती हैं। कुछ देर के बाद में कुछ स्थिर हुए तो बोले जी हमारा भैया वसुदेव कैसा है। बड़े सौभाग्य से पापी कंस अपने कर्मों से मारा गया, कुशल से हैं। और अब फिर वही लाला कहने के साथ ही साथ गला रुंध आया, रोने लगे। कृष्ण की बातें भूलने के लिए ब्रज में प्रतिदिन कभी गोवर्धन चले जाते हैं, घर में रहने से उसकी याद आती है। नन्नन नन्हे पाव हैं उनके, उसका चरण चिन्ह कुछ, उसके खेलने की पुतलियां हैं, बंसी है बजाने की, उसे देख करके उनका विरह और बढ़ जाता है। यहां भी जब ही वो सब यादें आती हैं तब वो बोल नहीं पाते। उद्धव से बोले जी बेटे, मैं लाला को भूलने के लिए गोवर्धन जाता हूं, तो वहां ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर उसने वो लीलाएं नहीं की। वहां से लौट करके जमुना के घाट पर आता हूं, वहां भी वैसे ही अपने सखाओं के साथ और सखियों के साथ में जो लीलाएं की वो स्मरण आ जाती है, हिचकी बन जाती है। इस तरह से उन्होंने कृष्ण की वो सब लीलाओं का वर्णन किया और रोने लगे बड़े जोर से। उद्धव जी ने उनको सांत्वना देना चाहा, जी कृष्ण ने सांत्वना देने के लिए भेजा है तो सांत्वना तो दूं, किंतु सोच रहे जी मैं क्या सांत्वना, मत रो, ये तो मैं कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? इसलिए मैं नहीं कह सकता, शास्त्र कहते हैं संसार में कोई भी प्राणी यदि कृष्ण के लिए रोए तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। रोए तो कृष्ण के लिए रोए, खूब रोए। तो मैं कहूं जी आप रो रहे हैं तो खूब रोइए, तो ये तो सांत्वना होगी नहीं, ये तो रो ही रहे हैं। और कहूं नहीं तो क्या कहूं जी आप बड़े भाग्यवान हैं, बहुत भगवान है जो कृष्ण के लिए रो रहे हैं। तो क्या कहूं जी मत रो, ये भी नहीं कह सकता, और कहूं जो रो तो सांत्वना होगी नहीं, इसलिए क्या कहूं। अंत में बोले शास्त्रों की बात बोले, क्या बोले, ओहो कृष्ण जो परमेश्वर है, विश्व ब्रह्मांड का रचयिता स्रष्टा, सब जीवों के हृदय में वास करने वाला है, और उसको अपना पुत्र मान करके रो रहे हैं। सचमुच में आप जैसा इस जगत में कोई भी सौभाग्यवान नहीं है, और मैया यशोदा जैसा कोई सौभाग्यवती नहीं है जो आज कृष्ण के लिए रो रहे। सचमुच में यदि रोना है तो कृष्ण के लिए रोए। इस कथा का सार भी यही है, कृष्ण के लिए रोना सीखो गोपियों से। अपने अपने लिए तो सभी रोते हैं, थोड़ा सा कष्ट आ गया, बेटा बीमार हो गया, बेटी बीमार हो गई, संसार में कोई कष्ट आया तो खूब रोते हैं, रो कृष्ण के लिए। तो उद्धव ने ठीक ही कहा, या बड़े सौभाग्य है, सौभाग्यवान है कि आप कृष्ण को जो जगत का स्रष्टा स्थिता ठीक करने वाला जो परब्रह्म है उसको आप अपना पुत्र मान करके रो रहे हैं, बड़े सौभाग्य। नंद बाबा बोले बेटा मैं समझता था जी अब चतुर कुछ हो गया है कृष्ण के संग में रहकर, किंतु अकल नहीं आई, तुम्हारे दूध के दांत भी अभी नहीं गए, तुम जैसा तो अबोध बालक मैंने हमने कभी देखा नहीं, सबसे जगत में इस समय मैं दुखी हूं और मुझको तुम कह रहा है, आप बड़े सौभाग्यवान हैं। मुझसे दुखी कौन होगा। मैं कृष्ण को पहले अपना पुत्र मानता था, अभी भी मानता हूं, और आपके मुख से सुना ये नहीं, वो त्रिलोकी का ब्रह्मांड का सृष्टा है, रचयिता और पालयिता है, वो मेरा पुत्र होकर के हमारे घर में आया, मैं उसे प्रेम नहीं कर सका, इसलिए हमें छोड़कर के दूसरी जगह चला गया जहां प्रेम पाता है, मथुरा में उसको प्रेम मिला होगा, इसलिए हमें छोड़कर के चला गया। हमसे दुर्भागा कौन है, कौन है? किसी को कोई एक मणि मिली और उसको कांच समझता हो, वो कहीं किसी ने ले लिया या गुम हो गई, तो वो बड़ी कांच जैसी चमकती थी उसके लिए रोता था, किसी ने कह दिया अरे वो तो मणि थी, पारस पत्थर था, लोहे को छुड़ाने से स्पर्श कराने से वो बन जाएगा सोना, तब वो मैं सुनकर के बहुत दुखी हुआ, हाय हाय हाय, आ हाथ में आई हुई मणि निकल गई, ऐसे आज मैं दुखी हो रहा, ये मेरा पुत्र चला गया पहले सोचता था, अब आपने जो बतलाया, तुमने जो बतलाया, ये विश्व ब्रह्मांड का रचयिता है, हाय है ऐसा पुत्र पा करके भी, ऐसा मैं दुर्भागा जो दूसरी जगह चला गया, ऐसा कर करके हाय हाय करते हुए रात भर इसी विरह व्यथा में बीत गई। उद्धव जी समझाने की कुछ चेष्टा की, किंतु वो तो समझाना ऐसा हुआ मानो घी अग्नि में घी डाल रहे, ऐसे वो बढ़ता गया, सवेरा हो गया, उन्होंने हाँ बल्कि और भी नंद बाबा ने कहा ये देखो जगत में पुत्र तो सबको होते हैं, किंतु एक पुत्र था दशरथ को, वनवास देने के बाद में जब राम चले गए सीता और लक्ष्मण के साथ में, तो दशरथ ने क्या किया, हा राम और तीसरी बार राम नहीं आया, मैं मर्क में क्यों नहीं गया, मैं मरता भी तू नहीं हूं, हमारा हृदय वज्र से भी कठोर है, ये कह करके मूर्छित होकर के गिर गए। फिर सवेरा हुआ, उद्धव वहां से निकले, कृष्ण कुंड वहीं पर है, कृष्ण कुंड में स्नान किया, अब अन्य संध्या करनी चाहिए, प्रत्येक हिंदू लोगों का कर्तव्य है गुरु से दीक्षा लेकर और संध्या अन्य जरूर करे, उसमें चित्त पवित्र होता है, आत्मा प्रसन्न होती है, भगवान के चरण में भक्ति होती है, जीवन मरण का दुख सदा के लिए दूर हो जाता है, इसलिए भगवान को स्मरण करने के लिए सवेरे की संध्या यहाँ पर रात दिन मिलते हैं, और फिर दोपहर में जहाँ दोनों पहर मिलते हैं, और फिर शाम को जरूर संध्या कुछ करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। उद्धव जी मंत्र जाप करने के बाद में हठात देखा, मैं क्या देख रहा हूं, इसी के तट पर जो कुंज है वो कदम्ब के कुंज है, चारों तरफ में हजारों हजारों कदम्ब के वृक्ष की क्यारियां लगी हुई हैं, इसलिए उसको उद्धव क्यारी कहते हैं या कदम्ब क्यारी कहते हैं, उसमें कुंज बने हुए हैं, और उसमें देखा जी कुछ गोपियां विरह में मत्त होकर के कृष्ण के जाने के समय, मथुरा जाने के समय से अब तक 3 महीने या कितने तक भोजन नहीं किया, घर नहीं लौटी, उनकी प्रतिनिधियां जोगमाया के द्वारा बनाई हुई वो बल्कि लौटे और उसी जगह में है, मलिन हो रही है, अपनी साड़ी को नहीं धुलाती क्योंकि कृष्ण संबंधी धूल और उनकी आंखों के आंसू मिलकर के मैले हुए हैं, पहले नहीं धुलाती और वहीं पर भाव में विभोर होकर के मूर्छित हुई पड़ी हुई, हा कृष्ण कर रही है, जब से कृष्ण गए हैं तब। उद्धव जी ने देखा, उद्धव जी को देखते ही कोई किसी सखी ने कहा ये नंद बाबा के द्वार पर एक सोने का रथ देखा जिसमें अक्रूर बैठ करके आया और कुरता से हमारे प्राण प्रियतम को लेकर चला गया। वही रथ अभी भी खड़ा है, क्यों खड़ा है? दूसरे ने कहा, दूसरी सखी ने कहा, तुम नहीं जानती हो, देखो ये अक्रूर आया कृष्ण को ले गया, जब मथुरा में गया तो कंस का वध हुआ, कंस मारा गया, अब उसकी 13वीं का दिन है, उसको पिंड देना है, हमारे शास्त्रों में पिंड देने की विधि है, तो मथुरा में पिंड नहीं मिला, गोपियां सभी कृष्ण के विरह में मर गई होंगी, ये समाचार पा करके आया है, उनका हृदय पिंड ले जाएगा और वहीं पर उसका श्राद्ध होगा, पिंडदान होगा, शायद इसलिए आया। एक बोली, रथ तो बहुत सुंदर है, सोने का बना हुआ है, कंस इसी का व्यवहार करता था, सोने के रथ पर आया, अजय क्यों आया? ओ, इसलिए आया होगा कि ये तो गौवा चराता था वन जंगलों में, अब अपने माता पिता को यह चमत्कार दिखलाने के लिए आया, अब मैं गौवा चराने वाला वो लकुटी लेने वाला नहीं हूं, अब तो मैं कंस के बदले मथुरा का मैं अब शाहनशाह हूं, राजा हूं, इस चीज को बतलाने के लिए, दिखलाने के लिए अपनी मैया को और बाप को भेजा है। यह हमारा रथ सोने के रथ पर चलता है तो मैं कैसे अब हो गया, अब मुझको चरवाहा और ये सब मत कहना, शायद इसीलिए उसने भेजा है। उद्धव बोले, जो मैं रथ पर चढ़कर के क्यों आया, मुझे रथ पर चढ़कर के नहीं मनाने का ये लक्षण नहीं है, मैंने बहुत गलती की, कृष्ण ने जबरदस्ती हमको इसमें बैठा दिया, किंतु ठीक नहीं हुआ, अभी भूखंड फट जाती तो उसमें से मैं समा जाता। एक गोपी ने कहा, तो इधर क्यों आया, जब आया माता पिता को संतना देने के लिए तो इसको इधर नहीं आकर के नंदबा के महल में जाना चाहिए, तो इधर क्यों आ गया? दूसरे कहते, तुम नहीं जानते ये इधर, अरे हम लोगों से तो उसका संबंध मानो तो संबंध है, और संबंध नहीं है तो नहीं है, हम लोगों का तो कृत्रिम है, किंतु माता और पिता से जो संबंध होता है वो रक्त का संबंध होता है, पुत्र माने और न माने उसका पुत्र उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके कोख से पैदा हुआ है पिता और माता से, और हम लोगों का मान लो तो संबंध है और नहीं मानो तो कोई संबंध नहीं है, प्रीति का एक संबंध था, तो इधर क्यों आया, इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। एक गोपी ने कुछ बात पलट दी और पलट कर उद्धव हम जानते हैं कि तुम कौन, तंग वृक्ष कृष्णानुचरं ब्रजस्त्रिय प्रलंब बाहु नवकंज लोचनम पीताम्बरम पुष्कर मालिनम लसत मुखारविंदम मणिमोष्ट कुंदनम। ओ तुम कौन हो, हम समझ गए हैं ये तुम कौन है। उद्धव जी देखने में कृष्ण ही जैसे श्याम रंग के, प्रलंब बाहु नवकंज लोचन कृष्ण है उद्धव जी, कृष्ण के, और कृष्ण ने अपना पीताम्बर भी दे दिया, अपनी फूल की माला भी दे दी और औरत देकर के उस पर बैठा करके उनको भेजा है, अपनी प्रसादी माला इत्यादि सभी दे दी। ओ ये श्याम है किंतु श्याम नहीं है, श्याम माने ये काला है रंग का, श्याम रंग का, किंतु कृष्ण नहीं है, किंतु हमारे नाके अभ्रांत हैं, ये जो गंध है इसकी माला में, इसके कपड़े में, पीताम्बर इत्यादि में, ये सुगंध तो कृष्ण के अंगों का सुगंध है, क्योंकि हम रोज ही जानती हैं, उसको अनुभव करती हैं। इसलिए जरूर कृष्ण का कोई अनुचर होगा, दूत होगा जिसको कृष्ण ने भेजा है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। उद्धव तुम कृष्ण का दूत हो, कृष्ण के साथ में रहते हो, उन्होंने तुम्हें भेजा है माता पिता की सांत्वना के लिए, तुम आए हो सांत्वना देने। अच्छा ये बतला सकते हो, जब प्रीति दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक की प्रीति होती है और एक नकली प्रीति होती है, एक निस्वार्थ प्रीति होती है सब कुछ देने के लिए और एक स्वार्थमय प्रीति होती है कुछ लेने के लिए। उदाहरण के रूप में देखो, कोई निस्वं तजन्ति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्याचार्यम ऋत्विजो द्वत्त दक्षिण। जिस प्रकार से देखो, कुंभी स्त्री सुकृता जदवत सुमन शिव सटपद, पहले तुम ही से आरंभ करें। सटपद माने भौरा, जैसे भौरा फूलों पर मधु के लिए इधर उधर जाता है, उस पर बैठता है, उसका मधु आस्वादन करता है, फिर दूसरे पर चल जाता है, या मधु समाप्त हुआ वो उस फूल पर नहीं रहता। जिस प्रकार से गणिका वेश्या जब किसी पुरुष का सर्वस्व हरण कर लेती है पैसे, तो गले में हाथ देकर के उसे धक्का दे देती है, क्योंकि उसे अब पैसा नहीं मिलने का। जिस प्रकार से राजा जब तक समर्थ रहता है, प्रजा का पालन करता है, तब प्रजा उसकी बात सुनती है, और यदि राजा दुर्बल हो जाता है तब प्रजाएं विद्रोह कर देती है, उस राजा को नहीं मानती। जिस प्रकार से एक लड़का छात्र विद्यालय में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, पढ़ते हैं, और जब विद्या समाप्त हो जाती है, दीक्षा समारोह हो जाता है, उसके बाद में जन्म भर भी कुछ नहीं आता जी मास्टर साहब गुरुदेव आप कैसे हैं, बस उतने ही तक समाप्त हो गए। जिस प्रकार वृक्ष में बहुत से पक्षी रहते हैं, उसमें छाया होती है, उसमें फल होते हैं, जैसे बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, उसमें फल लगे रहते हैं, उस पर पक्षी एकदम भरपूर रहते हैं, कलरव करते रहते हैं, और जो ही वो वृक्ष सूख गया, बस पत्ते झड़ गए, फल नहीं है, वृक्ष खड़ा है, अब उसकी तरफ में नजर भी नहीं डालते। मृगा हिरणे वन में रहती हैं, उसमें फल फूल खाती है, चरती है खूब, और उसमें आग लगी, जल गया, तो फिर उसके को छोड़ करके दूसरी जगह चली जाएगी। इति गोप्यो ही गोविंदे गत वाक काय मानुष, उधर से पूछ रहे उद्धव हमारा प्रेम तो निर्दोष था, निर्मल था, किसी स्वार्थ के लिए कृष्ण को हमने प्यार नहीं किया, उनसे कुछ मांगा नहीं, कभी का आभूषण भी कृष्ण ला करके गोपियों को दिए होंगे नहीं, कोई वस्त्र दिए होंगे, घर दिया जो तुम्हारे घर में हमारे घर में वास करो, नहीं, हम कुछ चाहती भी नहीं थी, हम तो कृष्ण की स्वाभाविक जो रुचिकर और प्रीतिकर सेवा हो, तन से मन से वचन से तैल धारावत अविच्छिन्न गति से करती रहे, उसमें कोई स्वार्थ की बू नहीं थी, गंध नहीं था। और प्रियतम को भी देखा, उनके प्रिय में प्रेम में कोई गंध नहीं थी, हमसे कुछ नहीं चाहा, तो ये प्रेम कैसे टूट गया बतला सकते हो, कैसे टूट गया? उद्धव जी सिर खुजलाने लगे, उत्तर नहीं दे सके इसका, कैसे प्रेम टूट गया। हमारे समय से तो प्रेम टूटा नहीं बल्कि और बढ़ गया होगा, कृष्ण की दृष्टि में भी वह प्रेम बढ़ गया, टूटा नहीं। किंतु उद्धव जी को कोई उत्तर सुझाई नहीं, कृष्ण ने तो ये सब चीजें बतलाई नहीं थी। इस प्रकार से गोपियां जो बाहरी वन में थी इस प्रकार से रोने लग गई, कहते कहते कहते। उन्होंने उद्धव को साथ में लिया और गंभीर वन में, और गंभीर वन में आध घंटा हो गया तो 30 मिनट में क्यों नहीं। हेलो कृष्णदास,
वृंदावन बिहारी लाल की।
दादाजी प्रेम विरह का कोई सुनाएंगे? अच्छा आ जाइए आप, तब तक कृष्णदास जी करें।
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
I'm not हमारे कन्हैया
बहुत सुंदर। इधर गोपियां कृष्ण का लीला चरण करती हैं। बाल्य लीलाओं से अब तक की कथाओं का कह करके रुदंता गत निर्लज्ज होकर के वहां पर नंद बाबा यशोदाइया और ब्रजवासी बैठे हैं। जो नहीं कहना चाहिए सब उपालंब के जरिए सब कहने लग गए। काचिन मधुकर्म दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण अंग संगम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पे इदम अब्रवीत। कोई मैंने राधिका गोपियां उद्धव को ले गई, उद्धव दूर में खड़े रहे और उनको प्रणाम किया और वो गोपी अचेतन सो रही है, मर गई है या जीवित है उसको रुई यहां दे करके देख रहे हैं नाक पर मरी की बची। सांस बहुत धीरे धीरे चल रही है। सोने की पुतली पुष्प सैया में एकदम पड़ी हुई है, उसे उठाने की चेष्टा कर रहे हैं उठती नहीं। और उसी समय में जिस समय उद्धव दूर ले गई दूर से और उन्होंने प्रणाम किया बैठ गए प्रणाम करके, तो ये जो कि फूलों के सैया पर कंचन की पुतलिका सोई थी वो धीरे धीरे काचिन मधुकर्म दृष्टि एक भ्रमर को देखा। भ्रमर गुंजार करता हुआ आया और उनके चरण कमलों को कमल समझकर मधु आहरण करने के लिए उस पर बैठना चाहा। उन्होंने देखा ध्यान दृष्टि से और देख करके समझ रही है कृष्ण संगमम। कृष्ण तो बिना प्रियतमा के रह नहीं सकते, मथुरा में गए हैं, मथुरा की जादव पत्नियां होंगी उनके साथ में कृष्ण का संग देखकर उनसे बैठे हुए विहार कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं ऐसा देखा और उसे क्रोध हो गया। प्रिय प्रस्थापितम दूतम सोचा कि उसने अब हमको तो मान हुआ है इसलिए हमारा मान दे करके उन्होंने अब ये अपना मधुकर को दूत भेज अपने समान ही काला अंतर और बाहर भेजा है हमारे पास में हमें सांत्वना देने के लिए। श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरु गलित अंतलम प्रेम की पुस्तक है। जैसे कृष्ण गॉड इज लव, लव इज गॉड, भागवत भी ऐसी है। गीता पहली पुस्तक है और ये पीएचडी की अंतिम पुस्तक है। प्रेम का पाठ पढ़ना होगा तो श्रीमद् भागवत को पढ़ना होगा किसी सद्गुरु से तब समझेंगे। विद्या भागवत अवधि, ये विद्या भागवत अवधि है, इसके बाद में प्रेम के बाद में कोई विद्या नहीं बचती। तो गोपियां प्रेम की मूर्ति है, कहा गया कि धर्म की प्रेम की ध्वजा भी है ये गोपियां। तो वो गोपी कृष्ण के अंग संग का जदु रमणियों के और चिंतन करते हुए और इस प्रकार से बोली मधु पितो बंधु मा सुख सांद्री सपत्ना कुछ बिलित माला कुमकुम भक्त मधुपति तन मानिनी नंद प्रसादम जब सदस्य विडम्बम जस्य दुस्त तमिल मधु पितो बंधु मधु मधुपान करने वाला। साधारण शब्दों में मधु शराब को भी कहते हैं मध्य को, मध्य पी करके आए हो कितो बंधु। कितो माने होता है छली धूर्त कपटी, तो कपटी धूर्त जो मथुरा गया है और मधु की मध्य की बड़ी भारी उसकी होलसेल की दुकान है वहां से मधुपान करके आया है। भ्रमर कहता जी स्वामिनी जी आप ऐसा क्यों करें, मैं मधु की दुकान से थोड़े आया हूं। क्या लक्षण देखा, तो तुम्हारे वही सभी मद्यपों के जो लक्षण होते हैं सारे लक्षण तुम्हारे अंदर में विद्यमान हैं। किसी माननी को मनाने के लिए आने का यह ढंग नहीं है जिस ढंग से तुम आए हो। कुछ भी ले ली तमाला कुंकुम भाव एड़े गंभीर है। प्रेम की एक ऐसी उच्च दशा, बल्कि बहुत सर्वोच्च दशा, जिसमें मादानख्य भाव आता है, समस्त भावों को क्रोड़ीभूत कर दिव्योन्मा जल्प सुजल्प अभिजल्प इत्यादि ये सब उसमें दिखाया गया। विश्व के किसी भी साहित्य में ऐसा सुंदर प्रेम का वर्णन नहीं है। प्रेम कृष्ण के पूर्वराग में वेणुगीत का हमने प्रसंग सुनाया। पूर्वराग में कितना कृष्ण के प्रति अनुराग है, और गोपी गीत में मिलने के बाद में एक क्षण के विछुड़न के लिए उनकी क्या दशा हो जाती है कि वो कृष्ण में तन्मय होकर के अपने को समझती है कि मैं कृष्ण हूं, और किसी एक गोपी को पुतना बनाकर उसका स्तन पान करती है, कोई गोवर्धन को धारण करती है, कपड़े को हाथ पर उठा लेती है, मानो मैं गोवर्धन कृष्ण हूं और गोवर्धन को उठा रही हूं। ये लीला अभिनय प्रेम की उच्च दशा में, गोपियों को भान नहीं है जो वो दिखला रही है किंतु कर रही है। प्रेम के जो उत्कट सबसे सर्वोत्तम लक्षण हो सकते हैं उस समय गोपियों में है, तो इस प्रकार से लीला अभिनय कर रही है। और फिर चलते चलते कृष्ण के चरणों को देखा, और किसी ने बीच में कृष्ण के चरणों के बीच में एक छोटा सा और पैर देखा, और उसको देखते ही समझ गए अरे ये तो राधा जी के सुकोमल चरण है, अकेले तो गए नहीं। अब राधा जी की पक्ष वाली गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, अरे तो कृष्ण इसको साथ में ले लिया है, कहीं देखा बतलाया होगा महाराज जी ने, ये सब प्रसन्न देखा जब पैर उसके दिखते नहीं, ओ जरूर यहां पर वो माननी अब चलने में असमर्थ हो गई होगी, कह जाओ मैं नहीं चल सकती तुम जाए चले चलो, तो उसको गोदी में उठा करके लेकर के गए। किसी जगह देखा यहां पर कुछ फूल पड़े हुए हैं और कृष्ण के चरण चिन्ह पूरे नहीं है, केवल पंजे का छाप है, ओ यहां पर किसी लता को पकड़ करके और उसका फूल चयन कर रहे हैं, वो इसके लिए केशों में पास के लिए उन्होंने माला गुथी होगी और यहां पर दिया है, यहीं पर बैठे हैं। ये सब देखते देखते गोपियां आ रही है, प्रेम में कैसे विरह में व्यतीत है, एक मिनट में ली वो प्राण छोड़ देंगे, और यहां पर बिछुड़ने के बाद में क्या दशा होती है। जब कृष्ण रहते नहीं रहते उनकी, तो उनकी चिंता करते 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 भावाविष्ट होकर के एक तमाल के वृक्ष को कृष्ण समझ करके आलिंगन करने लगती है, कृष्ण मिल गए, श्रृंगार करने लगती है, हंसने लगती है, उसी से बातचीत करती है, और कभी कभी विरह में एकदम शून्य जैसी दिखते हैं। शास्त्र में उसके सब लक्षण ही नहीं है जो कि राधिका के देखे, चैतन्य महाप्रभु के जीवन में चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रदर्शन किया उन भावों को, और कहीं उसकी उपमा भी उज्ज्वल लीन मणि इत्यादि में भी उसकी उपमा नहीं है। तो करिए कि जो मनाने के लिए दूध को ऐसा, अब ये विरह की स्थिति में मिलन में जैसी दशा हो विरह में, ऐसे चिंतन करते 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 मानो कृष्ण यही आ गए, उनसे बात करने लगते हैं, बड़ी खुश हो जाते हैं, खाना पीना आरंभ कर देती है, और मिलन में उनका भारी भावी विरह से दुखित होकर के, बहुत दुखी होकर के मूर्छित हो जाए, वो कहते हैं कि मूर्छा भी अच्छा है, उसमें कृष्ण का ध्यान तो हो जाता है, कृष्ण का चिंतन हो जाता है। हम लोगों की मूर्छा होती है शून्य, गोपियों की मूर्छा और भक्तों की मूर्छा शून्य नहीं, उस समय अंतर इंद्रियों से कृष्ण का आलिंगन करती हैं, कृष्ण से बातचीत करती हैं, उस लीला रस में डूब जाती हैं। योगियों जैसा नहीं, योगी लोग तो ध्यान करने में कृष्ण का चिंतन ही नहीं आता। ओ, ये मधुपान करके आया है, कहां से आया? मधुपुरी से। मधु चलाने वाला मध्य की दुकान कौन होलसेल डील करता है? वो कपटी धूर्त किताब बंद हो, कुछ भी नहीं तमाला। कुमकुम स्मश, ये कुमकुम अपने होठों में, अपने गोफों पर, गुल्फों में ये कुमकुम लगा करके आया। ये कहां से कुमकुम आया? कुछ बिलोलित जादव रमणिया हैं, उनसे मिला होगा, इसलिए उनके हृदय का कुमकुम इस माला पर आई, और माला पर ये भाई बैठा तू, और तुमको वो कुमकुम लग गया, और मुझे मन हो रहा है उनके प्रति, और तुम हमको मनाने के लिए आए, यही तरीका है। दूर हट जा, भागो यहां से, हमारे चरणों को मत छू, मद्यप अपवित्र। एक श्लोक की व्याख्या में बहुत समय लग गया, आज समय है अब 10 मिनट के हो गया, शायद 7 बज गया, क्या व्याख्या करेंगे अब? अगले बार के लिए रख देंगे, नहीं तो अगली बार क्या बतलाएंगे? इसी सबको बतलाएंगे, अभी बहुत भरा पड़ा है रस। बात मधुपति मानी तन प्रसाद, ओह, जिसका दूत ऐसा मूर्ख है, अज्ञानी है, जिसको हिताहित का ज्ञान नहीं, क्या कहना चाहिए, किस रूप में, किस वेश में आना चाहिए, इसको मानने, तो उसका पति कैसा होगा? उसका मालिक जो होगा, खुद मधु को चलाने वाला, मध्य की दुकान चलाने वाला, वो कैसा होगा? वो जब मधुपुर पतियों मधुपुरी के सभा में जब बैठा होगा, तो वहां के जादव नरेश जब आएंगे, तो उसके रति के चिन्हों को देख करके कहेंगे, अरे ये हमारी पत्नियों के साथ में मिला है, तो उसकी विडंबना करेंगे, उसको लज्जित करेंगे, इसलिए तुम्हारा आना अनुचित इस वेश में हुआ। जदु सदस्य विडंबम जस्य दोस्त, ऐसे मधुपति का तुर्दूत है मनाने के लिए, हमारे चरणों को मत छो। उधर में वो कुछ भनभन करने लग गया, झंकार करने लग गया, और ठीक पैरों पर जाकर के बैठेगा, उसको दूर भगा रही, बोली जाओ, तुम कुछ कहना चाहते हो? स्वामिनी जी, वो बड़े पवित्र हैं, आप जैसा समझ रही हैं वैसी बात नहीं है, वो तो बड़ा आदर करते हैं वहां के मधुपुर के लोग, मथुरा के लोग उनको, और उनकी पत्नियां बड़ी श्रद्धा करती हैं, आप इसको इस रूप में क्यों देख रही हैं? वो बड़े निर्दोष हैं, उन्होंने यदि निर्दोष नहीं होते तो हमको दूत बना करके भेजा जाए, उनका मान तोड़ करके उनको ले आओ, अथवा उनको सांत्वना दो, ये भेजते क्यों? इसका प्रमाण तो हम ही है। अरे सकता, दूर हटो, तुम्हारी बात हम जानते हैं, वो ठग है। सखत अधर सुधां स्वांग मोहिनी पाई त्वा सुमन सैव शब्द तत्तजे स्मान भवात्रिक परिचरित कथम तत्पाद पद्म तुम्हें हृत चित्ता उत्तम श्लोक। सखित अधर सुधा, अपने अधर की सुधा को एक बार हमें पान कराया, कैसे? जिस प्रकार से सुमन सब, हम सुमन हैं, सुमने सुंदर मन, निर्दोष मन, पवित्र मन वाली है, और ये कैसा है? तुम जैसा काला, काले हृदय का तुम है, वैसे ही कपटी धूर्त है तू, जिस प्रकार से तू सुमनस सुंदर मन वाले सुंदर सुगंधित फूलों पर बेली चमेली जूई के ऊपर में बैठता है, और उसका रस पान करके चला जाता है, ठीक ऐसे ही वो नए नैवेलियों को देखते हैं, और उनका रसास्वादन करके फिर उसको नहीं पूछते, फिर दूसरे पर चले जाते। आज हमने छोड़ करके मथुरा में खुबजा के रूपी फूल के ऊपर में बैठे, उसको प्रियतमा बदला बनाया है, परिचरित कथन। यदि भावना करता है, गुंजार करता है, तो कहते ओ तुम ऐसा कर, यदि ऐसी ही बात है, अपवित्र है, तो लक्ष्मी जी उसका पैर क्यों उपलब्ध हैं? नारायण को छोड़कर के भी उनके राश में मिलित होना चाहती है, क्यों? अरे हम तो उनसे चतुर है ना, वो जानती नहीं, वो तो आज आई है, और हम बचपन से ही उनको जानते हैं जे कैसे वो उनकी ठग भरी बातों में फंस जाती है। उत्तम श्लोक जलपाई, उनके उत्तम उत्तम बातों में, मधुर भरी कपट भरी बातों में वो भूल जाती हैं, भूल जाती हैं, और इसलिए उनको करती हैं ऐसा उलाहना देने के बाद में। यदि वो भ्रमर फिर झंकार करता हुआ उनके चरणों पर बैठना चाहती हैं, तो ओ तुम क्या कहना चाहते हो, मैं समझ गई, तुम यही कहना चाहते हो जो कृष्ण निर्दोष है इसलिए भेजा है, तो फिर मैं तुमसे कहती हूं कि मैं बहुत शरण हूं। दो पैर के मनुष्य होते हैं, चार पैर के जानवर होते हैं, और तू छह पैर वाला षटपद है तो और मूर्ख है। मनुष्यों से चार पद वाले जानवर कुछ अधिक अज्ञानी होते, और षटपद वाले जो छह पैर वाले हैं न जाने कितने मूर्ख हों, तो तुम मूर्ख है, तुम कुछ नहीं जानते। कहां जाना चाहिए, कहां कुछ जाने से लाभ होगा, तुमको ज्ञान नहीं है, हम तो ठगी गई हैं, इसलिए हमें हमारे पास में कुछ नहीं है, एक चना भी तुमको दे दे, कुछ देने के लिए नहीं है, हम रास्ते की फकीर हैं, जाओ मैं बतला दे, मैं हम लोग बतला रहे हैं कि तुम जहां जाने से तुमको कुछ मिलेगा, कहां चले जाओ, मधुपुरी मथुरा, और वहां कोई माननी होगी उसको कृष्ण मनाते हैं, फिर दूसरी माननी है फिर उसको मनाते हैं, चौथी और अभिनत है संख्याओं में, वो मनाते होंगे, और वो कोई मानती हो कोई रूठती होगी, जो मन जिसका दूर कर दिया है वो तुम जो कुछ मांगेगे वो सब दे देंगे, वहां जाओ यहां पर भगो भगो। हम जानती हैं जदु नाम अधिपति, अब वो जदुपति हुआ है, जदुपति उसकी ये सब रमणियां हैं, प्रियतमा हैं, उनके पास में जाओ वो देंगे। विजय सख सखी नांगीयतां तत्प्रसंगं क्षपित कुचरु जास्ति कल्पयन्ति इष्टदेव दिभौच रसायन कास्त्यस्तद् दुरापा। उसके लिए यदि कहो, गोपियां कहते हैं उसके लिए कौन सी सुलभ है, दुर्लभ है। देवी भूमि च रसाय, स्वर्ग की स्त्रियां इस पृथ्वी मंडल की, अथवा कहां कभी कोई एक स्त्री नहीं है जो उसके सुंदर रूप को और उसके रूप को दर्शन करके बंसी की निनाद सुनकर के उसके वशीभूत में कपट रुचि हास, उसका हास कैसा, हंसना कैसा है, कपट बहुत ही मधुर लगने वाला। इसी से भूतिर्मयन का लक्ष्मी उसके चरणों की सेवा करती है, और लोगों की तो क्या करें। इस तरह से मृग्यु कपिंद्रम इत्यादि का वर्णन किया, कृष्ण को उपागम कर दिया और अंत में इस सब का वर्णन करते करते करते, अब पिछली बार आऊंगा तो केवल इसका बतलाऊंगा, बहुत गंभीर भाव है, 10 मिनट में संभव नहीं, इसलिए गोपियों की आराधना हो तो गोपियों के अधीन अनुगत होकर के आराधना, गोपियों का जैसा भाव था ऐसे ही भाव लाने के लिए चेष्टा की जाए, तब तो कुछ कृष्ण प्रेम हम लोग सीख सकते हैं, हमारा जन्म सार्थक होगा और भागवत कुछ समझ में आएगा। तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर भगवान यदि इच्छा होगी तो कभी अगले वर्ष इधर में आएंगे, तो फिर इस सब का विशेष वर्णन करके इस अध्याय का जो बाकी रह गया है। उद्धव जी बस एक श्लोक कहते हैं, बहुत से श्लोक हैं किंतु उसमें एक श्लोक है। जावै स्वीयार्चित अजाद भी आप्त कामय योगेश परे गपि यदात्म निराश गोष्ठम कृष्णस्य तद् भगवत चरणारविंदम नस्तम तनेश बीजहु परिरक्षता। उद्धव जी कहते हैं कि मैं दूसरे जन्म में ब्रज में कहीं घास बनना चाहता हूं, तृण लता गुल्म बनना चाहता, गोपी अभिसार के समय में अपने चरण की धूरी हमारे ऊपर में जब देंगी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जावई स्याचित, कैसे चरण, कृष्ण के चरण जो है कैसे हैं, जावई स्याचित महालक्ष्मी जी जिनका अर्चन करते हैं, अज ब्रह्मा शंकर इत्यादि जितने भी हैं आप्त काम योगी लोग हैं, वे मन से चिंतन करते हैं कृष्ण के चरणों का और चिंतन नहीं कर पाते, और गोपियां क्या करती हैं, रास में कृष्ण के उस चरण कमल को साक्षात अपने हृदय स्थल पर रखती हैं और उसे पलटती हैं, अपने काम ताप को दूर करती हैं साक्षात। तो गोपियों की कैसी महिमा है, इसलिए बंदे नंद ब्रज स्त्री नंद, नंद ब्रज की जो महिलाएं हैं, ब्रज रमणियां हैं, ब्रजांगना है, उनकी एक चरण की धूलि की वंदना करती हूं, करता हूं, एक चरण की, एक चरण की, वो भी एक धूलि की वंदना करता हूं, ये कौन गोपी होगी, राधिका जी होगी, उनके चरणों की वंदना करता हूं, जिनकी कथा से ये सब विरह कथाओं से त्रि जगत ही उन्मत्त हो जाता है, पुनातिपन पवित्र कर देता है ऐसे गोपियों की चरण। इसलिए कृष्ण हमारे आराध्य नहीं बल्कि गोपियां आराध्य है, वो गोपियों के प्रियतम है, हमारी आराध्या हमारी स्वामिनी ये राधिका जी है, ऐसी भागवत आज हम समाप्त कर रहे हैं, कल इसकी पूर्णाहुति होगी, जैसा कि रमेश भाई जी ने बतलाया है वैसे ही कल का प्रोग्राम होगा, और इसके बाद में पूर्णाहुति होगी, व्यास पूजा होगी, और इसके बाद समाप्त, सबको प्रसाद दिया जाएगा, और ये सब कथाएं याद रखेंगे, थोड़ी सी भी अपने हृदय में ले करके जाएंगे तो मैं समझूंगा कि हम लोगों का 7 दिन का भागवत आज समाप्त। गौर प्रेमानंद कृष्णदास एक कीर्तन कर,
अभी कुछ बाकी तुम लोगों का है।
तंग वीक्ष कृष्णानुचरं ब्रजस्त्रिय प्रलम्ब बाहु नौकंज लोचनम पीताम्बरम पुष्कर मालिनम लसत मुखारविंदम मणिमोष्ट कुंदनम।
ओ तुम कौन हो, हम समझ गए हैं ये तुम कौन है।
उद्धव जी देखने में कृष्ण जैसे श्याम रंग के, प्रलम्ब बाहु नौकंज लोचन कृष्ण है उद्धव जी, कृष्ण के, और कृष्ण ने अपना पीताम्बर भी दे दिया, अपनी फूल की माला भी दे दी, और औरत दे करके उस पर बैठा करके उनको भेजा है, अपनी प्रसादी माला इत्यादि सभी दे दी। ओ ये श्याम है किंतु श्याम नहीं है, श्याम माने ये काला है रंग का, श्याम रंग का, किंतु कृष्ण नहीं, किंतु हमारे नाके अभ्रांत हैं, ये जो गंध है इसकी माला में, इसके कपड़े में, पीताम्बर इत्यादि में, ये सुगंध तो कृष्ण के अंगों का सुगंध है, क्योंकि हम रोज ही जानती हैं उसको, अनुभव करती हैं, इसलिए जरूर कृष्ण का कोई अनुचर होगा, दूत होगा जिसको कृष्ण ने भेजा है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। उद्धव तुम कृष्ण का दूत, कृष्ण के साथ में रहते हो, उन्होंने तुम्हें भेजा है माता पिता की सांत्वना के, तुम आए हो सांत्वना देने। अच्छा ये बतला सकते हो, जब प्रीति दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक ही प्रीति होती है और एक नकली प्रीति होती है। एक निस्वार्थ प्रीति होती है सब कुछ देने के लिए, और एक स्वार्थमय प्रीति होती है कुछ लेने के लिए। उदाहरण के रूप में देखो, कोई निस्वं तजंति गणिका अकल्पम निपतिम पजा अधीत विद्याचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणम। जिस प्रकार से देखो, कुंभी स्त्री सुकृता जतवत सुमन शिव षट पद, पहले तुम ही से आरंभ करें। षटपद माने भौरा, जैसे भौरा फूलों पर मधु के लिए इधर उधर जाता है, उस पर बैठता है, उसका मधु आस्वादन करता है, फिर दूसरे पर चल जाता है। जहां मधु समाप्त हुआ वो उस फूल पर नहीं रहता। जिस प्रकार से गणिका वेश्या जब किसी पुरुष का सर्वस्व हरण कर लेती है पैसे, तो गले में हाथ देकर के उसे धक्का दे देती है, क्योंकि उसे अब पैसा नहीं मिलने का। जिस प्रकार से राजा जब तक समर्थ रहता है, प्रजा का पालन करता है, तब प्रजा उसकी बात सुनती है, और यदि राजा दुर्बल हो जाता है तब प्रजाएं विद्रोह कर देती है, उस राजा को नहीं मानती। जिस प्रकार से एक लड़का छात्र विद्यालय में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, पढ़ते हैं, और जब विद्या समाप्त हो जाती है, दीक्षा समारोह हो जाता है, उसके बाद में जन्म भर भी कुछ नहीं आता जी मास्टर साहब गुरुदेव आप कैसे हैं, बस उतने ही तक समाप्त हो गए। जिस प्रकार वृक्ष में बहुत से पक्षी रहते हैं, उसमें छाया होती है, उसमें फल होते हैं, जैसे बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, उसमें फल लगे रहते हैं, उसमें पक्षी एकदम भरपूर रहते हैं, कलरव करते रहते हैं, और जो ही वो वृक्ष सूख गया, बस पत्ते झड़ गए, फल नहीं है, वृक्ष खड़ा है, अब उसकी तरफ में नजर भी नहीं डालते। मृगा हिरणे वन में रहती हैं, उसमें फल फूल खाती हैं, चरती हैं खूब, और उसमें आग लगी जल गया तो फिर उसके को छोड़ करके दूसरी जगह चली जाएगी। इति गोप्यो ही गोविंदे गत वाक्य काय मानुष, उधर से पूछ रहे उद्धव, हमारा प्रेम तो निर्दोष था, निर्मल था, किसी स्वार्थ के लिए कृष्ण को हमने प्यार नहीं किया, उनसे कुछ मांगा नहीं, कभी का आभूषण भी कृष्ण ला करके गोपियों को दिए होंगे नहीं, कोई वस्त्र दिए होंगे, घर दिया जो तुम्हारे घर में हमारे घर में वास करो, नहीं, हम कुछ चाहती भी नहीं थी, हम तो कृष्ण की स्वाभाविक जो रुचिकर और प्रीतिकर सेवा हो, तन से मन से वचन से तैल धारावत अविच्छिन्न गति से करती रहे, उसमें कोई स्वार्थ की बू नहीं थी, गंध नहीं था। और प्रियतम को भी देखा, उनके प्रिय में प्रेम में कोई गंध नहीं थी, हमसे कुछ नहीं चाहा, तो ये प्रेम कैसे टूट गया बतला सकते हो, कैसे टूट गया? उद्धव जी सिर खुजलाने लगे, उत्तर नहीं दे सके इसका, कैसे प्रेम टूट गया? हमारे समय से तो प्रेम टूटा नहीं, बल्कि और बढ़ गया होगा, कृष्ण की दृष्टि में भी वह प्रेम बढ़ गया, टूटा नहीं। किंतु उद्धव जी को कोई उत्तर सुझाई नहीं, कृष्ण ने तो ये सब चीजें बतलाई नहीं थी। इस प्रकार से गोपियां जो बाहरी वन में थी इस प्रकार से रोने लग गई कहते कहते कहते। उन्होंने उद्धव को साथ में लिया और गंभीर वन में आध घंटा हो गया तो 30 मिनट में क्यों नहीं बोला कृष्णदास
वृंदावन बिहारी लाल की।
दादाजी प्रेम विरह का कोई सुनाएंगे? अच्छा आ जाइए आप तब तक कृष्णदास जी करें।
जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमन हरि बोल। राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा
जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
महाराज जी ने आज्ञा की है मेरे का भाई, महाराज जी आपकी गत बंबई यात्रा में जो उद्धव प्रसंग आपने सुनाया था हमें, मेरी ये रचना उसी आपका ही कृपा प्रसाद आपको ही समर्पित करता हूँ। Yeah. हमारे कन्हैया तुझित चुनैया कुजिन मोहि मोहन कोई और हो गे हमारे कन्हैया तुझित चुनैया कुजिन मोहि मोहन कोई और हो गे हमारे कन्हैया तो कुंजन के भूषण वो मेला के भूषण कोई और होंगे हमारे कन्हैया तो गौवन चरैया वो मथुरा के राजा कोई और होंगे हमारे कन्हैया तो गौवन चरैया वो मथुरा के राजा हमारे कन्हैया कोई और के जो कोई और होंगे हमारे कन्हैया हमारे दो कोई और के जो कोई और होंगे हमारे कन्हैया कहे ना फिरत सौ कहे छोड़ हमको कोई और होंगे हमारे कन्हैया कहे ना फिरत सौ कहे छोड़ हमको कोई और हमारे जो मन थे कन्हैया बस में हमारी दशा तो समझते ही होंगे हमारे जो मन थे कन्हैया बस में हमारी दशा तो समझते ही होंगे हमारे वीर का ये केवल गोवर्धन मुझे दर नहीं है कोई और नयन से कपटते होंगे हमारे कन्हैया हमारे कन्हैया हमारे कन्हैया हमारी श्रीराधा हमारे कन्हैया हमारे कन्हैया हमारे कन्हैया हमारी श्रीराधा हमारे हमारे कन्हैया हमारे कन्हैया हमारी
श्रीराधा बहुत सुंदर इधर गोपियां कृष्ण का लीला चरण करती हैं बाल्य लीलाओं से अब तक की कथाओं का करके रुदंता कथक निर्लज्ज होकर के वहां पर नंद बाबा यशोदाइया और ब्रजवासी बैठे हैं जो नहीं कहना चाहिए सब उपालंब के जरिए सब कहने लग गए काचिन मधुकर्म दृष्टवा ध्यायंती कृष्ण अंग संगम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पे इदम अब्रवीत कोई कोई मैंने राधिका गोपियां उद्धव को ले गई उद्धव दूर में खड़े रहे और उनको प्रणाम किया और वो गोपी अचेतन सो रही है मर गई है या जीवित है उसको रुई यहां दे करके देख रहे हैं नाक पर मरी की बची सांस बहुत धीरे धीरे चल रही है सोने की पुतली पुष्प सैया में एकदम पड़ी हुई है उसे उठाने की चेष्टा कर रहे हैं उठती नहीं और उसी समय में जिस समय उद्धव दूर ले गई दूर से, और उन्होंने प्रणाम किया, बैठ गए प्रणाम करके। तो ये जो कि फूलों के सैया पर कंचन की पुतलिका सोई थी, वो धीरे धीरे काचिन मधुकर दृष्टि एक भ्रमर को देखा। भ्रमर गुंजार करता वहां आया और उनके चरण कमलों को कमल समझकर मधु आहरण करने के लिए उस पर बैठना चाहा। उन्होंने देखा ध्यान दृष्टि से और देख करके समझ रही है कृष्ण संगमम। कृष्ण तो बिना प्रियतमा के रह नहीं सकते, मथुरा में गए हैं, मथुरा की जादव पत्नियां होंगी, उनके साथ में कृष्ण का संग देखकर उनसे बैठे हुए विहार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसा देखा और उसे क्रोध हो गया। प्रिय प्रस्थापितम दूतम, सोचा कि उसने अब हमको तो मान हुआ है, इसलिए हमारा मान देख करके उन्होंने अब ये अपना मधुकर को दूत भेज अपने समान ही काला अंतर और बाहर भेजा है हमारे पास में हमें सांत्वना देने के लिए। श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरुण गलित अंतलम प्रेम की पुस्तक है। जैसे कृष्ण गॉड इज लव, लव इज गॉड, भागवत भी ऐसी है। गीता पहली पुस्तक है और ये पीएचडी की अंतिम पुस्तक है। प्रेम का पाठ पढ़ना होगा तो श्रीमद् भागवत को पढ़ना होगा किसी सद्गुरु से, तब समझेंगे। विद्या भागवत अवधि, ये विद्या भागवत अवधि है, इसके बाद में प्रेम के बाद में कोई विद्या नहीं बचती। तो गोपियां प्रेम की मूर्ति हैं, कहा गया कि धर्म की प्रेम की ध्वजा भी हैं ये गोपियां। तो वो गोपी कृष्ण के अंग संग का जदु रमणियों के और चिंतन करते हुए और इस प्रकार से बोली, मधु पितो बंधु मा सुख सांद्री सपत्ना कुछ बिलित माला कुमकुम भक्त मधुपति तन मानिनी नान प्रसादम जद सदस विडम्बम जस दुस्त तमिल मधुपति तो वो बंधु मधु मधुपान करने वाला। साधारण शब्दों में मधु शराब को भी कहते हैं, मध्य को, मध्य पी करके आए हो कि तो बंधु, कि तो माने होता है छली धूर्त कपटी। तू कपटी धूर्त जो मथुरा गया है और मधु की मध्य की बड़ी भारी उसकी होलसेल की दुकान है, वहां से मधुपान करके आया है। भ्रमर कहता जी स्वामिनी जी आप ऐसा क्यों करें, मैं मधु की दुकान से थोड़े आया हूं, क्या लक्षण देखा? तो तुम्हारे वही सभी मद्यपों के जो लक्षण होते हैं सारे लक्षण तुम्हारे अंदर में विद्यमान है। किसी माननी को मनाने के लिए आने का यह ढंग नहीं है जिस ढंग से तुम आए हो। कुछ भी ले ली तमाला कुमकुम भाव एड़े गंभीर है। प्रेम का एक प्रेम की एक ऐसी उच्च दशा, बल्कि बहुत सर्वोच्च दशा, जिसमें मादानख्य भाव आता है, समस्त भावों को प्रोड़ी भूत कर दिव्योन्माद जल्प सुजल्प अभिजल्प इत्यादि ये सब इसमें दिखाया गया। विश्व के किसी भी साहित्य में ऐसा सुंदर प्रेम का वर्णन नहीं है। प्रेम कृष्ण के पूर्वराग में बेनिगुइत का हमने प्रसंग सुनाया, पूर्वराग में कितना कृष्ण के प्रति अनुराग है, और गोपी गीत में मिलने के बाद में एक क्षण के विछुड़न के लिए उनकी क्या दशा हो जाती है कि वो कृष्ण में तन्मय होकर के अपने को समझती है कि मैं कृष्ण हूं, और किसी एक गोपी को पुतना बनाकर उसका स्तन पान करती है। कोई गोवर्धन को धारण करती है, कपड़े को हाथ पर उठा लेती है, मालूम है गोवर्धन कृष्ण हूं और गोवर्धन को उठा रही हूं। यही लीला अभिनय प्रेम की उच्च दशा में, गोपियों को भान नहीं है जो वो दिखला रही है किंतु कर रही है। प्रेम के जो उत्कट सबसे सर्वोत्तम लक्षण हो सकते हैं उस समय गोपियों में है, तो इस प्रकार से लीला अभिनय कर रही है। और फिर चलते चलते कृष्ण के चरणों को देखा और किसी ने बीच में कृष्ण के चरणों के बीच में एक छोटा सा और पैर देखा और उसको देखते ही समझ गए, अरे ये तो राधा जी के सुकोमल चरण है, अकेले तो गए नहीं। अब राधा जी की पक्ष वाली गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, अरे तो कृष्ण इसको साथ में ले जा रहे, कहीं देखा बतलाया होगा महाराज जी ने, ये सब प्रसन्न देखा जब पैर उसके दिखते नहीं, ओ जरूर यहाँ पर वो मानी अब चलने में असमर्थ हो गई होगी, कह जब मैं नहीं चल सकती तुम जाए चले चलो, तो उसको गोदी में उठा करके लेकर के गए। किसी जगह देखा यहाँ पर कुछ फूल पड़े हुए हैं और कृष्ण के चरण चिन्ह पूरे नहीं है, केवल पंजे का छाप है, ओ यहाँ पर किसी लता को पकड़ करके और उसका फूल चयन कर रहे हैं, वो इसके लिए केशों में पास के लिए उन्होंने माला गुथी होगी और यहाँ पर दिया है, यहीं पर बैठे हैं। ये सब देखते देखते गोपियाँ आ रही हैं, प्रेम में कैसे विरह में व्यतीत है, एक मिनट में लिए वो प्राण छोड़ देंगे और यहाँ पर बिछुड़ने के बाद में क्या दशा होती है। जब कृष्ण रहते नहीं रहते उनकी, तो उनकी चिंता करते 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 भावाविष्ट होकर के एक तमाल के वृक्ष को कृष्ण समझ करके आलिंगन करने लगती है, कृष्ण मिल गए, श्रृंगार करने लगती हैं, हंसने लगती है, उसी से बातचीत करती हैं और कभी कभी विरह में एकदम शून्य जैसी दिखते हैं। शास्त्रों में उसके सब लक्षण ही नहीं है जो कि राधिका के देखे, चैतन्य महाप्रभु के जीवन में चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रदर्शन किए उन भावों को और कहीं इसकी उपमा भी उज्ज्वल लीन मणि इत्यादि में भी उसकी उपमा नहीं है। तो करिए कीजिए मनाने के लिए दूध को, अब ये विरह की स्थिति में मिलन में जैसी दशा हो विरह में, ऐसे भी चिंतन करते 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 मानो कृष्ण यहीं आ गए, उनसे बात करने लगते हैं, बड़ी खुश हो जाते हैं, खाना पीना आरंभ कर देती हैं और मिलन में उनका भारी भावी विरह से दुखित होकर के, बहुत दुखी होकर के मूर्छित हो जाए, वो कहते हैं कि मूर्छा ही अच्छा है, उसमें कृष्ण का ध्यान तो हो जाता है, कृष्ण का चिंतन हो जाता है। हम लोगों की मूर्छा होती है शून्य, गोपियों की मूर्छा और भक्तों की मूर्छा शून्य नहीं, उस समय अंतर इंद्रियों से कृष्ण का आलिंगन करती हैं, कृष्ण से बातचीत करती हैं, उस लीला रस में डूब जाती हैं। योगियों जैसा नहीं, योगी लोग तो ध्यान करने में कृष्ण का चिंतन ही नहीं आता। ओ ये मधुपान करके आया है, कहां से आया, मधुपुरी से, मधु चलाने वाला मध्य की दुकान कौन होलसेल डील करता है, वो कपटी धूर्त किताव बंद हो कुछ भी ले लेता माला कुमकुम स्मर्श, ये कुमकुम अपने होठों में, अपने गोफों पर गुल्फों में ये कुमकुम लगा करके आया, ये कहां से कुमकुम आया, कुछ बिलोलित जादव रमणिया हैं उनसे मिला होगा इसलिए उनके हृदय का कुमकुम इस माला पर आई और माला पर ये भाई बैठा तू और तुमको वो कुमकुम लग गया और मुझे मन हो रहा है उनके प्रति और तुम हमको मनाने के लिए आए, यही तरीका है, दूर हट जा, भागो यहां से, हमारे चरणों को मत छू, मध्य अपवित्र। एक श्लोक की व्याख्या में बहुत समय लग गया, आज समय है अब 10 मिनट हो गया, शायद 7 बज गया, क्या व्याख्या करेंगे। अब अगले बार के लिए रख देंगे, नहीं तो अगली बार क्या बतलाएंगे इसी सबको बतलाएंगे। अभी बहुत भरा पड़ा है रस, बहुत मधुपति तन प्रसाद। और जिसका दूत ऐसा मूर्ख है, अज्ञानी है, जिसको हिताहित का ज्ञान नहीं, क्या कहना चाहिए, किस रूप में, किस वेश में आना चाहिए, इसको मानने, तो उसका पति कैसा होगा, उसका मालिक जो होगा खुद मधु को चलाने वाला, मद्य की दुकान चलाने वाला, वो कैसा होगा। वो जब मधुपुर पतियों मधुपुरी के सभा में जब बैठा होगा, तो वहां के जादव नरेश जब आएंगे, तो उसके रति के चिन्ह को देख करके कहेंगे, अरे ये हमारी पत्नियों के साथ में मिला है, तो उसकी विडंबना करेंगे, उसको लज्जित करेंगे, इसलिए तुम्हारा आना अनुचित इस वेश में हुआ। जदु सदस्य विडंबम जस्य दोस्त, ऐसे मधुपति का तुम दूत है मनाने के लिए, हमारे चरणों को मत छो। उधर में वो कुछ भन करने लग गया, झंकार करने लग गया, और ठीक पैरों पर जाकर के बैठेगा, उसको दूर भगा रही, बोली जाओ तुम कुछ कहना चाहते हो। स्वामिनी जी वो बड़े पवित्र हैं, आप जैसा समझ रही हैं वैसी बात नहीं है, वो तो बड़ा आदर करते हैं वहाँ के मधुपुर के लोग, मथुरा के लोग उनको, और उनकी पत्नियाँ बड़ी श्रद्धा करती हैं, आप इसको इस रूप में क्यों देख रही हैं, वो बड़े निर्दोष हैं, उन्होंने यदि निर्दोष नहीं होते तो हमको दूत बना करके भेजा जाए, उनका मान तोड़ करके उनको ले आओ अथवा उनको सांत्वना दो, ये भेजते क्यों, इसका प्रमाण तो हम ही हैं। अरे सकर्ता धर्षुरा दूर हटो, तुम्हारी बात हम जानते हैं, वो ठग है। सकृत अधर सुधांग स्वांग मोहिनी पायित्वा सुमन सैव सद्य तत्तजेस्मान भवात्रिक परिचरित कथम तत्पाद पद्मं तुमत्ना ह्यपिवत हृति चित्ता उत्तम श्लोक। सकृत अधर सुधा, अपने अधर की सुधा को एक बार हमें पान कराया, कैसे, जिस प्रकार से सुमन सब, हम सुमन हैं, सुमन है सुंदर मन, निर्दोष मन, पवित्र मन वाली है, और ये कैसा है, तुम जैसा काला, काले हृदय का तुम है, वैसे ही कपटी धूर्त है तू, जिस प्रकार से तू सुमनस सुंदर मन वाले सुंदर सुगंधित फूलों पर बेली चमेली जूई के ऊपर में बैठता है और उसका रस पान करके चला जाता है, ठीक ऐसे ही वो नए नैवेलियों को देखते हैं और उनका रस स्वादन करके फिर उसको नहीं पूछते, फिर दूसरे पर चले जाते। आज हमने छोड़ करके मथुरा में खुबजा के रूपी फूल के ऊपर में बैठे, उसको प्रियतमा बदला बनाया है, परिचरित कथन, यदि भावना करता है, गुंजार करता है, तो कहते हैं ओ तुम ऐसा कर, यदि ऐसी ही बात है, अपवित्र है, तो लक्ष्मी जी उसका पैर क्यों उपलब्धती हैं, नारायण को छोड़कर के भी उनके रास में मिलित होना चाहती है क्यों, अरे हम तो उनसे चतुर है ना, वो जानती नहीं, वो तो आज आई है, और हम बचपन से ही उनको जानते हैं जे कैसे वो उनकी ठग भरी बातों में फंस जाती है। उत्तम श्लोक जलपाई, उनके उत्तम उत्तम बातों में, मधुर भरी कपट भरी बातों में वो भूल जाती हैं और इसलिए उनको करती हैं ऐसा उल्हाना देने के बाद में। यदि वो भ्रमर फिर झंकार करता हुआ उनके चरणों पर बैठना चाहती हैं, तो ओ तुम क्या कहना चाहते हो, मैं समझ गई, तुम यही कहना चाहते हो जो कृष्ण निर्दोष हैं इसलिए भेजा है, तो फिर मैं तुमसे कहती हूँ कि मैं बहुत शरण हूँ। दो पैर के मनुष्य होते हैं, चार पैर के जानवर होते हैं, और तू छह पैर वाला षटपद है तो और मूर्ख है। मनुष्यों से चार पद वाले जानवर कुछ अधिक अज्ञानी होते, और षटपद वाले जो छह पैर वाले हैं न जाने कितने मूर्खों में। तो तुम मूर्ख है, तुम कुछ नहीं जानते। कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कुछ जाने से लाभ होगा, तुमको ज्ञान नहीं है। हम तो ठगी गई हैं, इसलिए अभी हमारे पास में कुछ नहीं है। एक चना भी तुमको दे दे, कुछ देने के लिए नहीं है। हम रास्ते की फकीर हैं, जाओ मैं बतला दे, मैं हम लोग बतला रहे हैं कि तुम जहाँ जाने से तुमको कुछ मिलेगा। कहाँ चले जाओ? मधुपुरी, मथुरा, और वहाँ कोई माननी होगी, उसको कृष्ण मनाते हैं, फिर दूसरी माननी है, फिर उसको मनाते हैं, चौथी, और अगिनत है संख्याओं में वो मनाते होंगे, और वो कोई मानती हो कोई रूठती होगी। जो मन जिसका दूर कर दिया है वो तुम जो कुछ मांगेगी वो सब दे देगी। वहाँ जाओ, यहाँ मत भगो भगो। हम जानती हैं जदु नाम अधिपति, अब वो जदुपति हुआ है, जदुपति, उसकी ये सब रमणिया हैं, प्रियतमा हैं, उनके पास में जाओ वो देंगे। विजय सख सखी नांगीयतां तत्प्रसंगं क्षपितर कुचरु जास्ते कल्पयन्ति इष्टदेवा दिभौच रसायन कास्त्यस्तद् दुरापा। उसके लिए यदि कहो, गोपियां कहते हैं उसके लिए कौन सी सुलभ है, दुर्लभ है। देवी भूमि च रसाय, स्वर्ग की स्त्रियां इस पृथ्वी मंडल की, अथवा कहां कभी कोई एक स्त्री नहीं है जो उसके सुंदर रूप को और उसके रूप को दर्शन करके बंसी की निनाद सुनकर के उसके वशीभूत में कपट रुचि हास, उसका हास कैसा, हंसना कैसा है, कपट बहुत ही मधुर लगने वाला। इसी से भूतिर्मयन का लक्ष्मी उसके चरणों की सेवा करती है, और लोगों की तो क्या करें। इस तरह से मृग्यूरियु कपिंद्रम इत्यादि का वर्णन किया, कृष्ण को उपालंब दिया। और अंत में इस सब का वर्णन करते करते करते, अब पिछली बार आऊंगा तो केवल इसका बतलाऊंगा, बहुत गंभीर भाव है, 10 मिनट में संभव नहीं। इसलिए गोपियों की आराधना हो तो गोपियों के अधीन अनुगत होकर के आराधना, गोपियों का जैसा भाव था ऐसे ही भाव लाने के लिए चेष्टा की जाए, तब तो कुछ कृष्ण प्रेम हम लोग सीख सकते हैं, हमारा जन्म सार्थक होगा और भागवत कुछ समझ में आएगा। तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर भगवान यदि इच्छा होगी तो कभी अगले वर्ष इधर में आएंगे, तो फिर इस सब का विशेष वर्णन करके इस अध्याय का जो बाकी रह गया है। उद्धव जी बस एक श्लोक कहते हैं, बहुत से श्लोक हैं किंतु उसमें एक श्लोक है, जावई सी अर्चित अजाद ही आप्त कामय योगेश्वर गपी यदात्म निराश गोष्ठम कृष्ण से तद भगवत चरण अरविंदम नस्तम तनेश बिजहु परिरक्षा। उद्धव जी कहते हैं कि मैं दूसरे जन्म में ब्रज में कहीं घास बनना चाहता हूँ, तृण लता गुल्म बनना चाहता, गोपी अभिसार के समय में अपने चरण की धूरी हमारे ऊपर में जब देंगी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जावई स्याचित, कैसे चरण, कृष्ण के चरण जो है कैसे हैं, जावई स्याचित, महालक्ष्मी जी जिनका अर्चन करते हैं, आज ब्रह्मा शंकर इत्यादि जितने भी हैं आप्तकाम योगी लोग हैं, वे मन से चिंतन करते हैं कृष्ण के चरणों का और चिंतन नहीं कर पाते। और गोपियां क्या करती हैं, रास में कृष्ण के उस चरण कमल को साक्षात अपने हृदय स्थल पर रखती हैं और उसे पलटती हैं, अपने काम ताप को दूर करती हैं साक्षात। तो गोपियों की कैसी महिमा है। इसलिए वंदे नंद ब्रज स्त्री नंद, नंद ब्रज की जो महिलाएं हैं, ब्रज रमणियां हैं, ब्रजांगनाएं हैं, उनकी एक चरण की धूलि की वंदना करती हूँ, करता हूँ एक चरण की, एक चरण की, वो भी एक धूलि की वंदना करता हूँ। ये कौन गोपी होगी, राधिका जी होगी, उनके चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कथा से ये सब बिना कथाओं से त्रिजगत ही उन्मत्त हो जाता है, पुनाति को पवित्र कर देता है, ऐसे गोपियों की चरण की धूलि। इसलिए कृष्ण हमारे आराध्य नहीं बल्कि गोपियां आराध्य, वो गोपियों के प्रियतम है। हमारी आराध्या, हमारी स्वामिनी ये राधिका जी है। ऐसी भागवत आज हम समाप्त कर रहे हैं, कल इसकी पूर्णाहुति होगी, जैसा कि रमेश भाई जी ने बतलाया है वैसे ही कल का प्रोग्राम होगा, और इसके बाद में पूर्णाहुति होगी, व्यास पूजा होगी, और इसके बाद समाप्त, सबको प्रसाद दिया जाएगा। और ये सब कथाएं याद रखेंगे, थोड़ी सी भी अपने हृदय में लेकर के जाएंगे तो मैं समझूंगा कि हम लोगों का 7 दिन का भागवत आज सफल। गौर प्रेमानंद कृष्णदास एक कीर्तन कर लो, अभी कुछ बाकी तुम लोगों का है ना?